हरे कृष्ण। पहला स्कंद 13वां अध्याय श्लोक संख्या 22, 23 एंड 24। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं क्लेशं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कपिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम तुमर्थो महा। श्रीचैतन्यमहाप्रभु मतमिदं तथा ग्रह न परः। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वा मृतुमेतदेव गोविन्द दामो धरमाधवीति। సజీవసంతం నవనీతచోరం గోపాంగనా చదుకూలచోరం శ్రీరాధికాయ హృదయస్య చోరం చోరాఖ్యకణ్యం పురుషం నమామి శ్రీకృష్ణశ్యామం మనసా స్మరామి. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభుని నిత్యానంద శ్రీ అద్వైతం గదాధరం శ్రీవాసుది గౌరభక్తవృంద హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. గ్రంథ శ్రీమద్భాగవత మహాపురాణ కీ జై హో. పహలా స్కంధ 13वां अध्याय जिसका शीर्षक है धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग. तो हमने देखा धृतराष्ट्र अपने समस्त पुत्रों को खोकर वहीं युधिष्ठिर महाराज के राज्य में अभी तक रह रहे हैं. तो विदुर जी अपने भाई की इस दुर्गति को देखकर बहुत दुखित हैं और उन्हें समझा रहे हैं कि कब तक यहाँ पड़े रहोगे, अब तो आपका जीवन समाप्त होने वाला है. अब फिर भी अभी तक आपकी इतनी आसक्ति है इस धन में, इस राज्य में, सब कुछ तो चले गए. जैसे कल श्लोक नंबर 21 में बताया, पितृ भ्रातृ सुहृत पुत्रा हतास्ते विगतम वयम आत्मा च जरया ग्रस्त परगृहम उपाससे. कि आपके पितृ, आपके पिताजी, आपके पुत्र, आपके भाई, आपके शुभचिंतक सब तो मारे गए हैं, आपका सब कुछ छूट गया है, यहाँ तक कि शरीर भी बहुत वृद्ध हो गया है, आप इतने बूढ़े भी हो गए हो और अभी तक दूसरों के घर में बैठे हुए हो, परगृह अभी तक आप यहाँ पर बैठे रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए यहाँ पर. आप कैसे अपना जीवन यहाँ पर बिता रहे हो, ऐसे जीने से तो मर जाना बेहतर है. आप पता नहीं किस प्रकार से यहाँ पर खाते हो, कैसे आप खा सकते हो, कैसे गले से नीचे उतरता है आपको अनाज. जिन लोगों ने आपके सारे पुत्रों को मार दिया उनके घर पर बैठकर आप खा कैसे. अभी कह रहे हैं श्लोक नंबर 22 में, अंध पुरैवा विधिरो मंद प्राज्ञश्च साम्प्रतम विशीर्ण दंतो मंदाग्नि सरागः कफमुद्वहन् अंधः पुरैव विधिरो मंद प्राज्ञश्च साम्प्रतम विशीर्ण दंतो मंदाग्नि सरागः कफमुद्वहन् अंधः पुरैव विधिरो मंद प्राज्ञश्च साम्प्रतम् विशीर्ण दंतो मंदाग्निः सरागः कफमुद्वहन् अंधः पुरैव विधिरो. अंध मतलब आप तो जन्म से ही, पुरैव मतलब प्रारंभ से, जब से पैदा हुए हैं तब से आप अंधे तो हैं ही. विधिरो लेकिन ऐसा लगता है कि अब तो आप बहरे भी हो गए हो, क्योंकि आराम से बोला जाता है तो सुनाई नहीं देता, बहुत जोर से बोलना पड़ता है तभी आपको सुनाई देता है. मतलब जन्म से आप अंधे हो, आंख तो जन्म से ही नहीं है, कान तो अब इस समय चला गया है और मंद प्राज्ञ. मैं तो आपको ये कह रहा हूँ महाराज, इस समय तो अभी आपकी बुद्धि भी काम नहीं कर रही है,
अभी बुद्धि भी कम, सांप्रतम आज तो ये हाल हो गया है कि अंधे थे पहले से, बहरे भी हो गए हो, बुद्धि भी काम नहीं कर रही। पहले तो आपको कोई बात अगर बताया जाता था, कुछ भी कोई बात समझाई जाती थी तो बहुत जल्दी समझ जाते थे, अब तो बिल्कुल भी नहीं समझते हो। और विशेषण दंतो, आपके दांत सारे हिल रहे हैं, आधे से ज्यादा तो गिर गए हैं, मंदाग्नि, और अब तो आपको भोजन भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। जब देखते हैं तब आप टॉयलेट की तरफ जा रहे हो तो मतलब पच नहीं रहा आपको भोजन भी। और सराग सराग कफम उद्भवन, सराग मतलब आवाजें निकलती रहती हैं उल्टी सीधी, खांसते रहते हो, और कफम उद्भवन बहुत सारा कफ निकलता है, बहुत सारा कफ निकाल निकाल कर खांसते रहते हो, थू करते रहते हो। बुढ़ापे में बहुत कफ आता है, हर जो बूढ़ा आदमी होता है ना वो थूकता रहता है। फिर भी सराग, सराग का एक मतलब होता है कि अभी तक तुम्हारा राग खत्म नहीं हुआ है, अभी तक राग जो आसक्ति है वो लगाए बैठे हो यहाँ पर, इतने सराग यानी आसक्ति के साथ आप इस घर में पड़े हुए हो। अनुवाद देखिए, आप जन्म से अंधे रहे हैं और हाल ही में आप बहरे हो चुके हैं, आपकी स्मृति कम हो गई है और बुद्धि विचलित हो गई है, आपके दांत हिल रहे हैं, आपका यकृत खराब हो गया है और आपके कफ निकल रहा है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वृद्धावस्था के सारे लक्षण धृतराष्ट्र में पहले से प्रकट हो चुके थे और उन सबों को एक एक करके बतलाकर उन्हें आगाह किया जा रहा है कि उनकी मृत्यु अत्यंत ही निकट है, तो भी वे भविष्य के प्रति मूर्ख की तरह निश्चिंत है। धृतराष्ट्र के शरीर में इंगित किए गए सारे लक्षण अपक्षय के थे, अर्थात मृत्यु के अंतिम आघात के पूर्व शरीर के क्षय होने के लक्षण थे। यह शरीर उत्पन्न होता है, बढ़ता है, बना रहता है, दूसरे शरीरों को जन्म देता है, क्षय होता है और तब विनष्ट हो जाता है, किंतु मूर्ख लोग नश्वर शरीर के साथ स्थायी समझौता करना चाहते हैं और सोचते हैं कि उनकी जायदाद, संतानें, समाज, देश आदि उन्हें संरक्षण प्रदान करेंगे। ऐसे मूर्खतापूर्वक विचारों में आकर वे ऐसे अस्थायी कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं और यह बिल्कुल भूल जाते हैं कि उन्हें यह अस्थायी शरीर त्याग कर नया शरीर ग्रहण करना है और समाज, मित्रता तथा प्यार की फिर नई व्यवस्था करनी है और अंत में फिर से नष्ट हो जाना है। वे अपना स्थायी स्वरूप भूल जाते हैं और अपने मूल कर्तव्य को भूलकर अस्थायी कार्य में सक्रिय हो जाते हैं। कितना सुंदर श्री प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि एक हर एक जीव की के अंदर 6 परिवर्तन आते हैं, पैदा होता है, बढ़ता है, बना रहता है कुछ समय के लिए, फिर रिप्रोडक्शन दूसरे शरीरों को जन्म देता है, क्षय होता है और विनष्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जीव जो है इस संसार में आते वो देख रहे हैं कि सारी तब्दीलियां हो रही हैं, शरीर बढ़ता भी है, शरीर दूसरे शरीरों को प्रोटेक्ट भी करता है, परंतु क्षय भी होता है, बूढ़ा भी होता है, लेकिन वो सोचता नहीं, नष्ट नहीं होगा, मेरा शरीर बच जाएगा। यह नाशवंत शरीर है उसको किसी भी तरह से संरक्षण प्रदान हो जाए, बड़े से बड़ा संरक्षण भी यदि प्रदान हो जाए तो भी एक न एक दिन मृत्यु आके उसे ले जाएगी। जीव आत्मा जब चली जाएगी तो यह शरीर इस योग्य नहीं रहेगा कि उसको कोई भी आपका प्रिय अपने पास रखे, कि हम जिसके अंदर आत्मा नहीं होगी उस शरीर को 2 दिन भी अपने घर पे रख सकते हैं। तो लेकिन फिर भी जीव इतना ज्यादा भूल जाता है, मतलब इतना ज्यादा बेवकूफ होता है, वो समझता है कि नहीं, ये सब मुझसे प्रेम करते हैं, यही मेरे अपने हैं, और इस अस्थायी जीवन में ही अपना सारा समय व्यस्त कर देता है और अपनी जो स्थायी स्वरूप है उसको बिल्कुल भूल जाता है। हितों और अपने वास्तविक कर्तव्य को भूल कर अस्थायी कार्यों में ही सक्रिय रहता है। जीव सक्रिय तो रहता है, लेकिन अगर देखा जाए तो पूरे दिन में कितना समय देता है अपनी आत्मा को, कितना समय देता है अपने कृष्ण को, कितना समय देता है अपनी भक्ति को। आज अगर किसी से कहा जाए कि आपको एक दिन में 16 माला करनी है, आपको शास्त्र अध्ययन करना है, भगवान की सेवा करनी है, तो हमें कहेंगे पागल हो गए हो, इतने हमारे पास इतने सारे इम्पोर्टेंट काम होते हैं, हम इतने बिजी होते हैं, यदि हम 16 माला करेंगे, शास्त्र अध्ययन करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो हमारे इम्पोर्टेंट काम क्या करें, कौन करेगा? हमारे लिए सबके पास, हमारे पास इन सब वस्तुओं के लिए समय नहीं है। याद रखिए भक्तों, अगर कोई आज ये कहता है कि भक्ति के लिए उसके पास समय नहीं है, तो वो सबसे बड़ा धूर्त है। क्योंकि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने यह शरीर दिया है, मनुष्य जन्म दिया है, केवल भक्ति करके अपने वास्तविक अस्तित्व को प्राप्त करने के लिए। तो कोई भी बहाना यदि हम बनाते हैं कि भाई ये कारण से हम भक्ति नहीं कर सकते, ये कारण से, वो सब केवल बहानेबाजी है। यदि हम आज भक्ति कोई नहीं कर रहा है, यदि कोई जप नहीं कर रहा है, यदि कोई शास्त्र अध्ययन नहीं कर रहा है, तो उसका एक ही कारण है, वो क्या है कि वो करना चाहता नहीं है, वो भगवान से प्रेम करता नहीं है, भौतिक वस्तु और व्यक्तियों से प्रेम करता है, जिसके कारण अपना सारा समय उन्हीं को देता है। यदि वो भगवान से प्रेम करेगा तो भगवान के लिए समय निकालेगा ना, भगवान से प्रेम के लिए उसके पास समय नहीं है। लेकिन जब कुछ चाहिए होता है, जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जब बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाता है, तब भगवान याद आता है इंसान को। वास्तव में भगवान के लिए उनके पास प्रेम नहीं, लेकिन भगवान ने कहा यदि तुम्हारे पास मेरे लिए प्रेम नहीं है, तो मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो अपने भौतिक जीवन, इस जीवन में इन भौतिक वस्तुओं और व्यक्तियों से अपना आकर्षण समाप्त करके भगवान के श्री चरणों की ओर अपने आकर्षण को निर्माण करे, यही इस जीवन की सफलता है। वरना यदि शरीर छूट जाए और सांसारिक वस्तुओं में, सांसारिक भोगों में यदि आसक्ति बनी रहे, तो फिर यह मनुष्य जीवन का सर्वनाश हो जाएगा। कोई लाभ नहीं उठा सकेंगे हम इस जीवन का, यदि इस जीवन में जीते जी हमारा राग भौतिक वस्तुओं से हटाकर भगवान के श्री चरणों में न लगा सके। तो यहाँ पर विदुर जी बता रहे हैं कि तुम्हारे पास बचा क्या है, अंधे तो जन्म से थे, बहरे हो गए हो, अक्कल खत्म हो गई है, दांत हिल रहे हैं, मंद अग्नि हो गई है, कफ निकल रहा है मुंह से, और अभी तक भौतिक वस्तु और व्यक्तियों में आसक्ति लगी हुई है तुम्हारी। निकलो यहाँ से, भगवान के श्री चरणों की ओर अपनी आसक्ति को निर्माण करो, अन्यथा तुम्हारा जीवन बेकार हो जाएगा। तो आगे श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपने मूल कर्तव्य को भूलकर स्थायी कार्यों में सक्रिय हो जाता है। विदुर जैसे साधु संत ऐसे लोगों को वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत करने के लिए उनके पास पहुंचते हैं, किंतु वे ऐसे साधु संतों को समाज पर आश्रित समझते हैं और लगभग सभी उनकी बातें अनसुनी कर देते हैं। यद्यपि वे अपनी इंद्रियों को तृप्त करने वाले तथा कथित दिखावटी साधु संतों का स्वागत करते हैं, विदुर ऐसे साधु नहीं थे जो धृतराष्ट्र की दुर्भावना की तुष्टि करते। वे जीवन की वास्तविक स्थिति को सही सही बतला रहे थे और यह बता रहे थे कि ऐसी आपत्तियों से अपने आप को किस प्रकार बचाया जाए। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं संत और गुरु वही होते हैं जो हमें जिंदगी की वास्तविकता को बताते हैं, जो हमें बताते हैं कि आपके जीवन का वो लक्ष्य नहीं है जिस लक्ष्य की ओर आप जा रहे हो। लेकिन यहाँ पर सारे ही लोग ऐसी बातों को इग्नोर करते हैं, नहीं सुनना चाहते हैं ये सब बातें। आजकल जीव केवल चापलूसी सुनना चाहते हैं, ये सुनना चाहते हैं कि हाँ आप तो बड़े भक्त हो, आप तो बहुत अच्छे इंसान हो, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो। ऐसा यदि कहेंगे ना तो उनको अच्छा लगेगा, आपकी बात भी सुनेंगे। उनको ये बोला जाएगा ना यदि कि क्यों आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो, भगवान का नाम लो, छोड़ो ये आसक्ति, क्यों मोह में पड़े हुए हो। तो उनको ऐसा लगेगा ये तो इसकी बात सुननी नहीं है। तो वास्तव में जो सच्चा संत होता है ना, जैसे विदुर जी एकदम सच्ची बात बता रहे हैं, उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि धृतराष्ट्र को अच्छा लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है। आजकल जो होता है ना, जितने भी संत होते हैं ना, वो पब्लिक को देखकर फिर प्रचार शुरू करते हैं ज्यादातर। मतलब ये देखते हैं कि इस पब्लिक को ये चीज अच्छी नहीं लगेगी तो नहीं बोलेंगे, है ना, ये चीज पसंद लगेगी तो ये वाली बोलेंगे। अगर मैं इनकी पसंद की चीज नहीं बोलूंगा तो कल से मेरी जो लोग आ रहे हैं ना, आधी आधी क्वांटिटी में आएंगे। आप सच्ची बात बता दो, शास्त्र की बात बता दो, आना है तो आए, वरना यदि एक भी व्यक्ति आपके सत्संग से, आपकी कथा से एक भी व्यक्ति यदि ओरिजिनल ज्ञान प्राप्त करता है, सच्ची शिक्षा प्राप्त करता है, तो आपका कार्य पूरा है। ये भगवान ये नहीं देखते कि क्वांटिटी कितनी है जो आपको सुन रही है, भगवान ये देखते हैं क्वालिटी क्या है जो आप सुना रहे हो। तो जो शास्त्र कहता है, जो भागवतम में लिखा है, जो गीता में लिखा है, भगवान के शब्दों को एज इट इज हम यदि प्रीच करते हैं तो वो जो वास्तविक शब्द होते हैं ना, वहां असर करते हैं। बाकी हम इसमें मिलावट कर दें, कुछ निकालें या कुछ है ना डालें, तो फिर उसकी जो प्योरिटी है ना वो खत्म। इसीलिए देखो श्रीमद् भगवद गीता में श्री प्रभुपाद जी ने कहा, भगवद गीता यथारूप जी आहे तिया, मतलब उसमें से ना कुछ निकाला है ना कुछ डाला है, उसी शब्दों को जैसे हम पढ़ रहे हैं उन्हीं शब्दों को विस्तार से बता रहे हैं, और अपनी तरफ से ना कोई स्टोरी डालनी। क्यों? भगवान ने जो बोल दिया, गुरु ने जो बता दिया, वो पर्याप्त है। अब इसी को समझा के दे देना बस, इसमें किसी मिक्स मसाला डालने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि विदुर वास्तविक साधु थे जो धृतराष्ट्र की दुर्भावना को तुष्टि नहीं, ऐसे साधु नहीं थे जो धृतराष्ट्र की दुर्भावना की तुष्टि करते। वे जीवन की वास्तविक स्थिति को सही से बता रहे थे और यह बता रहे थे कि ऐसी आपत्तियों से अपने आप को किस प्रकार से बचाया जाए। आगे बता रहे हैं विदुर जी धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, अहो महीयसी जंतो जीविताशा यथा भवान् भीमापवर्षितं पिण्डम् आदत्ते गृहपालवत् अहो महीयसी सन्तो जीविताशा यथा भवान् भीमापवर्षितं पिण्डम् आदत्ते गृहपालवत् अहो महीयसी जन्तो जीविताशा यथा भवान् भीमापवर्षितं पिण्डम् आदत्ते गृहपालवत् आय हाय। यहाँ पर दुख का प्रकट करते हुए बोलते हैं कि मनुष्य को जीने की कितनी लालसा होती है, आग लगे इस जीवन में, ऐसी लालसा, जीवन की जो लालसा होती है। अहो महीयसी जंतु जीविताशा यथा भवान मतलब आप जैसे लोग इस अवस्था में पाकर आकर भी कितनी दुख की बात है। जंतु जीविताशा यानी जीवों को जीने की कितनी आशा होती है, कितनी प्रबल आशा होती है, और आप कर क्या रहे हो, जरा देखो तो सही अपने जीवन में। भीमापवर्जितम, भीम के द्वारा दिया हुआ भोजन आप खाते हो, वो भीम जिसने आपके 100 पुत्रों को मारा, खाने लायक भोजन है ये? अपवर्जितम पिंडम आदत्ते, खुद खा लेते हैं फिर आपको देते हैं गृह पालवत कहते हैं कुत्ते को, जिस प्रकार एक कुत्ते को दिया जाता है ना खाना, सारा घर खा लेता है फिर उसके सामने फेंक दिया जाता है, तो उसी तरह भीम आपको डालता है और आप कुत्ते की तरह खाते हो। छी छी, भीम का दिया हुआ भोजन आप खाते हो, मतलब यहाँ पर बता रहे हैं गृहपालवत। गृहपालवत मतलब ये कुत्ता एक ऐसा जानवर होता है जो रहता है घर से बाहर, लेकिन उसको गृहपाल मतलब कोई को जानवर किसी को भी आने नहीं देते, अनजान जो व्यक्ति होता है उसको आने नहीं देता। और कुत्ता एक ऐसा जानवर होता है जो खिलाने वाले की बहुत फ्लिटरी करता है, बहुत चापलूसी करता है, डालने से पहले ही, अभी तक खाना डालते नहीं है, डालने से पहले ही पूछ हिलाना, ये करना वो आपने देखा है कभी, बहुत खुशामद करता है। अभी खाना डाल रहे होते ना, दीन भाव से आता है, पाँव के चक्कर लगाता है, तो ऐसे करता है। और मतलब खिलाने वाले की बहुत चापलूसी करता है। और इस संसार में एक जानवर ऐसा है जिसको खिलाने के लिए उसकी खुशामद करनी पड़ती है। हाथी एक ऐसा जानवर है कि खाने के लिए उसकी बहुत खुशामद करनी, जो महावत होता है उसको सहलाता है, मनाता है, खा लो तब खाता है। तो ऐसे वास्तव में होना चाहिए ना, कोई मनावे आग्रह करे तब खाना चाहिए ना। कुत्ता तो खिलाने वाले की चापलूसी करता है और हाथी को तो खाने के लिए चापलूसी करना पड़ता है, खाओ खाओ। भोजन वास्तव में प्रेम का खाना चाहिए, तिरस्कार का भोजन कहीं नहीं करना चाहिए। और जहाँ तिरस्कार हो वहां पर तो खाना ही नहीं चाहिए, भले भूखा रहना पड़े, वो जहर जैसा शरीर में असर करता है, मेडिकल रिएक्शन भी ऐसा होता है। वास्तव में भाव का भोजन खाना चाहिए। तो विदुर जी यहाँ पर धृतराष्ट्र को कहते हैं, आए हाय कितनी जीने की प्रबल आशा है आपको कि आप भीम के द्वारा कुत्तों की तरह डाला हुआ भोजन खाते हैं। वास्तव में भक्तों, अगर धृतराष्ट्र जी भीम के हाथों से या युधिष्ठिर महाराज के दिए हुए भोजन को खाते थे तो ये उनका सौभाग्य था कि एक वैष्णव, एक महावैष्णव के द्वारा उनको प्रसाद मिल रहा था। ये इस तरह से उनका तिरस्कार नहीं करते थे। युधिष्ठिर महाराज तो बहुत प्रेम करते थे, अपने पिता की तरह मानते थे धृतराष्ट्र जी को। लेकिन यहाँ पर विदुर जी इसलिए बता रहे हैं कि उनको दुख उत्पन्न हो, घर छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि कब तक आसक्ति बना, भले ही घर में सब आपको प्रेम कर रहे हैं लेकिन फिर इसका मतलब ये थोड़े है कि आप पूरा जीवन बस घर में लोगों व्यक्तियों के आकर्षण में उनकी आसक्ति में ही लगे रहोगे। जिस घर में रहना, धन अपने धन जो संग्रह किया उसका, ये सब का मोह खत्म करेंगे। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अंत कालच माम एव, केवल मेरे अंदर आपकी आपका आकर्षण होना चाहिए, आपकी आसक्ति होनी चाहिए। यदि ऐसा करोगे तो यह प्रयाति समद्भावम, तभी आप मुझे प्राप्त, मेरे अतिरिक्त अगर कुछ और याद आ गया तो फिर मेरी गारंटी नहीं है। यमयम आप स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, मृत्यु के समय जो कुछ याद करोगे उसी को पाओगे। तो भले ही घर वाले कितना ही प्यार करते हो लेकिन एक समय ऐसा आना चाहिए कि घर की समस्त आसक्ति को त्याग कर जीव को भगवान की ओर अपनी आसक्ति का निर्माण करना चाहिए। तो यही बता रहे हैं विदुर जी यहाँ पर कि आप निकलो यहाँ से, बहुत हो गया, कब तक भीम के टुकड़ों पर पलते रहोगे। और खा भी किसके द्वारा रहे, आगे बता रहे हैं, अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च गरुदाराश्च दूषिता हृतं क्षेत्रं धनं येषां तत्तत्तैरसुभिः कियत्। अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च गरुदाराश्च दूषिता ऋतं क्षेत्रं धनं येषां तत्तत्तैरसुभिः कियत्। अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च गरुदाराश्च दूषिता ऋतं क्षेत्रं धनं येषां तत्तत्तैरसुभिः कियत्। अग्निर्निसृष्टो मतलब वो लोग जिनको जलाने के लिए आपने अग्नि लगाई, दत्तश्च घरो, और इसके अलावा उनको विष दिया, घरों के थे विष उनको दिया, और दाराश्च दूषिता, उनकी पत्नी को, विवाहित स्त्री को आपने भरी सभा में अपमानित किया। वो सारे कार्य दिखा रहे हैं, वो सारी बातें याद करा रहे हैं जो उन्होंने पांडवों के साथ छल से किया था। अग्निर्निसृष्टो यानी कि जब वो वाराणसी के वाराणवर्त में गए थे और लाक्षाग्रह में अग्नि लगा, अभी वाले धृतराष्ट्र ने अग्नि नहीं लगाई थी, लेकिन अग्नि लगाने वाले थे, धृतराष्ट्र की प्लानिंग थी, ये आपस में योजना बनाई हुई थी। इसलिए अब आग तो वैसे तो भीम ने लगाई थी, क्योंकि उन्होंने ये पांडवों ने ये योजना बनाई कि हम खुद ही आग लगा के निकल जाते, तो आग भीम ने लगाई थी, लेकिन उस आग का अपराध फिर भी धृतराष्ट्र को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इंटेंशन देखा जाता है ना। उसने पहले से सोचा था, लाक्षाग्रह बनाया इसलिए गया था कि पांडवों को अग्नि लगा के मार दिया जाए। तो यहाँ बता रहे हैं कि अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च, अग्नि लगाई, उनको विष देने, विष देकर मारने का प्रयास किया, दाराश्च दूषिता, पत्नी को अपमानित किया, और हृतम क्षेत्रम धनम येषाम, छल और बल से उनका सब कुछ तो छीन लिया, क्षेत्र उनका, उनका जो स्थान था, उनकी जमीन जायदाद, उनका धन, ये शाम का दत्तय रसुभि कियत, और उनका धन छीना, उनका राज्य छीना, उनकी पत्नी का अपमान किया, और फिर भी तद दत्तय रसुभि कियत। आप जरा सोचो तो सही, आपने तो कुछ नहीं छोड़ा उनके पास, उनको पूरा मलिया मेट करने का आपने पूरा प्रयत्न किया, सर्वनाश कर देना चाहते थे, और आज जब वो भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त किए हैं, तो उन्हीं के हाथों खाकर आप जीना चाहते हो। छी छी, ऐसे जीवन से तो करोड़ों गुना अच्छा है मर जाना। महाराज तद दत्ते रसुभि कियत, यहाँ पर उनके दिए हुए टुकड़ों पर पलने से क्या फायदा, आपको जीने की जरूरत क्या है यहाँ पर खाना खाके, शर्म आनी चाहिए आपको यहाँ पर खाते हुए। तो अनुवाद देखिए, जिन लोगों को आपने अग्नि लगाकर तथा विष देकर मारना चाहा, उन्हीं के दान पर आपको जीवित रहने तथा गिरा हुआ जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। आपने उनकी एक पत्नी का अपमान किया है और उनका राज्य तथा धन छीना है। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझा रहे हैं कि वर्ण आश्रम धर्म पद्धति में जीवन का एक अंश आत्म साक्षात्कार के हेतु तथा मनुष्य जीवन में मोक्ष प्राप्त करने के लिए सुरक्षित रहता है। यह जीवन का नियमित विभाजन है, लेकिन धृतराष्ट्र जैसे लोग वृद्धावस्था में भी घर में बने रहना चाहते हैं, भले ही दुश्मन से दान स्वीकार करके अधम जीवन क्यों न बिताना पड़े। विदुर इस तथ्य को बताना चाहते हैं और धृतराष्ट्र पर जोर डालना चाहते थे कि अपमानित होकर दान स्वीकार करने की उपेक्षा अपने पुत्रों की भांति मर जाना अधिक श्रेष्ठ है। आज से 5000 वर्ष पूर्व एक धृतराष्ट्र था, लेकिन इस समय तो घर घर में धृतराष्ट्र है। राजनीतिज्ञ तो विशेष रूप से राजनैतिक गतिविधि से तब तक अवकाश ग्रहण नहीं करते जब तक क्रूर मृत्यु उन्हें घसीट नहीं ले जाती है, या कोई विरोधी व्यक्ति उन्हें मार नहीं देता है। मनुष्य जीवन के अंत तक गृहस्थ जीवन में चिपके रहना सबसे निपट अधमता है, अतएव इस समय विदुरों की आवश्यकता है जो ऐसे धृतराष्ट्रों को मार्ग पर ला सके। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जीवन केवल भौतिक वस्तुओं में, घर गृहस्थी में अपनी आसक्ति को चिपकाए रहने के लिए नहीं है, वास्तव में जीवन मिला है आत्म साक्षात्कार के लिए। तो भले ही जवानी में ऐसा है कि हम बहुत ज्यादा व्यस्त होते हैं, बच्चे छोटे होते हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं और जिम्मेदारियां अपनी खत्म करके जीव को कोशिश करनी चाहिए कि अपने सारे आकर्षण को भौतिकता से निकालकर भगवान के श्री चरणों में लगाए, तो ये होना चाहिए। लेकिन आजकल हम देखते हैं, शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं उस समय तो एक धृतराष्ट्र था और एक ही विदुर काफी था, लेकिन आज तो घर घर में धृतराष्ट्र है और अभी बहुत सारे विदुरों की आवश्यकता है जो जाके उनकी क्लास लें, उनको इन भौतिक आकर्षण से, आसक्ति से बचाएं, ताकि वो अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य की ओर जा सकें। वरना उन सब का जीवन यूं ही बर्बाद हो जाएगा और अपने जीवन के लक्ष्य को, कृष्ण प्रेम को वो कभी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। श्री प्रभुपाद की जय हो। ग्रंथ राशि में भागवत महाप्राण की जय हो। कृपया साथ रहेगा और मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा। हरे बोल।